Cambridge Assessment International Education, Cambridge IGCSC Examination in Urdu as a Second Language, June 2025, Paper 2, Listening. Turn over now. Mashq number 1. Sawal number 1 ta 8. Sawal number 1 se 8 ke liye aap 8 mukhtalif hisse sunenge. Har sawal ka jawab di gayi line par tehreer karein. Aapka jawab mukhtasar hona chahiye. Aap har hisse ko 2 baar sunenge. सवाल नंबर एक
जिया हम बाजार के करीब से गुजर रहे हैं क्यों ना ईद की खरीदारी भी कर लें
ख्याल तो बुरा नहीं लेकिन ये मुमकिन नहीं होगा क्योंकि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है
तो फिर हम कोशिश करेंगे कि एक घंटे में फारिग हो जाएं
सादिका तुम यहाँ रश देख रही हो आधा घंटा तो मुनासिब जगह पर गाड़ी खड़ी करने में लग जाएगा बेहतर होगा हम ये काम कल कर लें वैसे भी कल मुझे छुट्टी है
हाँ ये ठीक रहेगा जिया हम बाजार के करीब से गुजर रहे हैं क्यों ना ईद की खरीदारी भी कर लें
ख्याल तो बुरा नहीं लेकिन ये मुमकिन नहीं होगा क्योंकि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है
तो फिर हम कोशिश करेंगे कि एक घंटे में फारिग हो जाएं।
सादिका तुम यहाँ रश देख रही हो आधा घंटा तो मुनासिब जगह पर गाड़ी खड़ी करने में लग जाएगा बेहतर होगा हम ये काम कल कर लें वैसे भी कल मुझे छुट्टी है
हाँ ये ठीक रहेगा सवाल नंबर 2
जी आपको क्या चाहिए
मुझे 1 किलो मिठाई और 2 किलो पकौड़े दे दें
जी क्यों नहीं आप कहें तो गर्मा गर्म समोसे भी पैक कर दूं ताज़ा कीमे वाले
नहीं इसकी ज़रूरत नहीं मैं सिर्फ आलू वाले समोसे खाती हूँ
जी बहुत बेहतर तो ये लीजिए आपका सामान तैयार है जी आपको क्या चाहिए
मुझे 1 किलो मिठाई और 2 किलो पकौड़े दे दें
जी क्यों नहीं आप कहें तो गर्मा गर्म समोसे भी पैक कर दूं ताज़ा कीमे वाले
नहीं इसकी ज़रूरत नहीं मैं सिर्फ आलू वाले समोसे खाती हूँ
जी बहुत बेहतर तो ये लीजिए आपका सामान तैयार है
सवाल नंबर 3
मैं होटल मैनेजर हूँ फरमाइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ
मैं कमरा नंबर 302 से साइमा बोल रही हूँ मेरे कमरे का पंखा शोर कर रहा है
तकलीफ के लिए माजरत मैं अभी आपका कमरा तब्दील करवा देता हूँ
जी नहीं मेरी सहेलियों के कमरे भी यहाँ साथ हैं मैं कहीं और नहीं जाना चाहती बस आप यही ठीक करवा दें
जी बहुत बेहतर मैं अभी इसका बंदोबस्त करवा देता हूं मैं होटल मैनेजर हूं फरमाइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं
मैं कमरा नंबर 302 से साइमा बोल रही हूं मेरे कमरे का पंखा शोर कर रहा है
तकलीफ के लिए माजरत मैं अभी आपका कमरा तब्दील करवा देता हूँ
जी नहीं मेरी सहेलियों के कमरे भी यहाँ साथ हैं मैं कहीं और नहीं जाना चाहती बस आप यही ठीक करवा दें
जी बहुत बेहतर मैं अभी इसका बंदोबस्त करवा देता हूँ सवाल नंबर 4
हेलो नजमा मैं डॉक्टर रजा के क्लिनिक से सारा बोल रही हूँ मैं आपको इत्तला देना चाहती हूँ कि आज दोपहर 3 बजे آپ کی ڈاکٹر سے ملاقات کا وقت طے تھا۔ ڈاکٹر صاحب ایک ضروری کام سے کہیں گئے ہیں اور انہیں واپسی میں دیر ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہیں تو آج شام 6 بجے کے بعد ان سے ملاقات ممکن ہے، ورنہ کل صبح 10 بجے آپ ان سے مل سکتی ہیں۔ تکلیف کے لیے معذرت۔ ہیلو نجمہ، میں ڈاکٹر رضا کے کلینک سے سارا بول رہی ہوں۔ میں آپ کو اطلاع دینا چاہتی ہوں کہ آج دوپہر 3 بجے آپ کی ڈاکٹر سے ملاقات کا وقت طے تھا۔ ڈاکٹر صاحب ایک ضروری کام سے کہیں گئے ہیں اور انہیں واپسی میں دیر ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہیں تو آج شام 6 بجے کے بعد ان سے ملاقات ممکن ہے، ورنہ کل صبح 10 بجے آپ ان سے مل سکتی ہیں۔ تکلیف کے لیے معذرت۔
سوال نمبر 5۔
کمال، تم کل خریداری کے لیے گئے تھے، پھر کیا کچھ خریدا؟
مجھے تو ایک بیگ لینا تھا، میری بہن بھی ہمارے ساتھ تھی، اسے جوتے لینے میں بہت وقت لگ گیا۔ کئی جوتے دیکھنے کے بعد اسے ایک پسند آیا۔
تو پھر تم نے بھی کچھ لیا؟
ہاں، کم وقت میں بھی ایک اچھا بیگ مل گیا۔ واپسی پر کمپیوٹر کی دکان نظر آئی، اگر میرا بس چلتا تو سارا وقت وہیں گزارتا۔
کمال، تم کل خریداری کے لیے گئے تھے، پھر کیا کچھ خریدا؟
مجھے تو ایک بیگ لینا تھا، میری بہن بھی ہمارے ساتھ تھی، اسے جوتے لینے میں بہت وقت لگ گیا۔ کئی جوتے دیکھنے کے بعد اسے ایک پسند آیا۔
تو پھر تم نے بھی کچھ لیا؟
ہاں، کم وقت میں بھی ایک اچھا بیگ مل گیا۔ واپسی پر کمپیوٹر کی دکان نظر آئی، اگر میرا بس چلتا تو سارا وقت وہیں گزارتا۔
سوال نمبر 6۔
فواد، تم آج کل کون سی کتاب پڑھ رہے ہو؟
ویسے تو میں جاسوسی کہانیاں کم ہی پڑھتا ہوں، لیکن میرے ایک دوست نے اس کتاب کی اتنی تعریف کی کہ آخر کار میں نے اسے پڑھنے کا فیصلہ کیا۔
تو پھر کیسی لگی تمہیں یہ کتاب؟
مجھے واقعی مایوسی نہیں ہوئی، تمام کردار بہت دلچسپ ہیں۔ حالانکہ کہانی کے انجام کا اندازہ لگانا زیادہ مشکل نہیں۔
بہت خوب، پھر تو مجھے بھی ضرور دینا یہ کتاب۔ فواد، تم آج کل کون سی کتاب پڑھ رہے ہو؟
ویسے تو میں جاسوسی کہانیاں کم ہی پڑھتا ہوں، لیکن میرے ایک دوست نے اس کتاب کی اتنی تعریف کی کہ آخر کار میں نے اسے پڑھنے کا فیصلہ کیا۔
تو پھر کیسی لگی تمہیں یہ کتاب؟
مجھے واقعی مایوسی نہیں ہوئی، تمام کردار بہت دلچسپ ہیں۔ حالانکہ کہانی کے انجام کا اندازہ لگانا زیادہ مشکل نہیں۔
بہت خوب، پھر تو مجھے بھی ضرور دینا یہ کتاب۔
سوال نمبر 7۔
مصدق، میرا لیپ ٹاپ دیکھنا، اسے کیا ہو گیا ہے، یہ کام نہیں کر رہا۔
باجی، یہ کسی قسم کے حادثے کا شکار تو نہیں ہوا؟
ہاں، صفائی کرتے وقت میز سے گر گیا تھا، تب سے نہیں چل رہا۔ میری ای میل میں اہم معلومات ہیں، کہیں ضائع نہ ہو جائیں۔
ای میل کی معلومات تو محفوظ رہتی ہیں، آپ انہیں کسی بھی کمپیوٹر پر دیکھ سکتی ہیں۔
چلو، یہ تو اچھی بات ہے، شکریہ۔ مصدق، میرا لیپ ٹاپ دیکھنا، اسے کیا ہو گیا ہے، یہ کام نہیں کر رہا۔
باجی، یہ کسی قسم کے حادثے کا شکار تو نہیں ہوا؟
ہاں، صفائی کرتے وقت میز سے گر گیا تھا، تب سے نہیں چل رہا۔ میری ای میل میں اہم معلومات ہیں، کہیں ضائع نہ ہو جائیں۔
ईमेल की मालूमात तो महफूज रहती हैं, आप इन्हें किसी भी कंप्यूटर पर देख सकती हैं।
चलो ये तो अच्छी बात है, शुक्रिया। सवाल नंबर 8।
ख्वातीनों हजरात, मैं जहाज का कप्तान आसिफ आपसे मुखातिब हूँ। गुजारिश है कि जहाज चलने में अभी कुछ देर बाकी है, हम एक मुसाफिर का इंतजार कर रहे हैं। ये मुसाफिर कोई और नहीं बल्कि मेरे मुआविन पायलट हैं और सड़कों पर रश की वजह से उनके आने में कुछ ताखीर है। खुशकिस्मती से जहाज में ज़्यादा मुसाफिर नहीं हैं, इसलिए आप लोग अपनी मनपसंद सीट पर जहाज में कहीं भी बैठ सकते हैं। ख्वातीनों हजरात, मैं जहाज का कप्तान आसिफ आपसे मुखातिब हूँ। गुजारिश है कि जहाज चलने में अभी कुछ देर बाकी है, हम एक मुसाफिर का इंतजार कर रहे हैं। ये मुसाफिर कोई और नहीं बल्कि मेरे मुआविन पायलट हैं और सड़कों पर रश की वजह से उनके आने में कुछ ताखीर है। खुशकिस्मती से जहाज में ज़्यादा मुसाफिर नहीं हैं, इसलिए आप लोग अपनी मनपसंद सीट पर जहाज में कहीं भी बैठ सकते हैं।
मश्क नंबर 1 खत्म हुई। अब आप थोड़ी देर में मश्क नंबर 2 सुनेंगे। पर्चे में दिए गए मश्क नंबर 2 के सवालात पढ़ें। मश्क नंबर 2, सवाल नंबर 9। कॉफ़ी के बारे में एक रिपोर्ट सुनें और नीचे दिए गए जुमले एक या दो अल्फाज लिखकर मुकम्मल करें। आप ये रिपोर्ट 2 बार सुनेंगे।
कॉफ़ी का इस्तेमाल दुनिया के बेशतर ममालिक में मुख्तलिफ तरीक़ों से किया जाता है। कॉफ़ी को कैसे दरियाफ्त किया गया, इसके बारे में बहुत सी मुख्तलिफ कहानियाँ मशहूर हैं। इन सब में जो चीज़ मुश्तरक है वो ये है कि इसे सबसे पहले इथोपिया में पिया गया था। यूं तो कॉफ़ी पीने का पहला दुरुस्त तारीखी रिकॉर्ड 15वीं सदी का है, ताहम एक मशहूर कहानी के मुताबिक 9वीं सदी में भी कॉफ़ी मशरूब के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी। 17वीं सदी तक दुनिया भर में लोग कॉफ़ी से लुत्फंदोज़ हो रहे थे। कहानी के मुताबिक इथोपिया के एक किसान ने सबसे पहले कॉफ़ी के फ़ायदे दरियाफ़्त किए। किसान ने देखा कि उसकी बकरियां वहां उगने वाली सुर्ख फलियां खाने के बाद ज़्यादा हशाश बशाश हो गईं और बहुत देर तक न सोईं। ये सुर्ख फलियां कॉफ़ी के बीज थे जिन्हें वो अपने साथ घर ले आया। किसान ने अपने एक बुज़ुर्ग को ये फलियां दीं, जिसने शुरू में इन्हें मामूली ख्याल किया और आग में फेंक दिया। आग में जाते ही फलियों की खुशबू ने उसका जहन बदल दिया और उसने इन फलियों से एक लजीज गर्म मशरूब तैयार कर लिया। यूं कॉफ़ी लोगों में तेज़ी से मशहूर हुई और कुछ ही अरसे में अरब ममालिक में न सिर्फ घरों बल्कि कॉफ़ी शॉप्स में भी बाकायदा पी जाने लगी। जैसे जैसे कॉफ़ी की मकबूलियत यूरोप में फैली, कॉफ़ी की दुकानें वहाँ भी नज़र आने लगीं और जल्द ही समाजी सरगर्मियों का मरकज़ बन गईं। इसके बाद अंग्रेज़ कॉफ़ी लेकर शुमाली अमरीका चले गए। 1773 में जब वहाँ की हुकूमत ने चाय की खरीदो फरोख्त पर भारी टैक्स लगाया तो कॉफ़ी अमेरिका के लोगों का पसंदीदा मशरूब बन गई। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी पैदा करने वाला मुल्क ब्राज़ील है, जहाँ कॉफ़ी की इब्तिदा से मुतअल्लिक़ भी एक दिलचस्प कहानी है। एक फौजी को ब्राज़ील से कॉफ़ी के पौधे हासिल करने के लिए फ्रांस भेजा गया तो वहाँ सख्त पाबंदी की वजह से किसी भी पौधे या बीज को मुल्क से बाहर ले जाना बहुत मुश्किल था। चुनाचे वो फौजी फूलों के गुलदस्ते में कॉफ़ी के बीज छुपाकर वापस ब्राज़ील ले गया, जहाँ कॉफ़ी की पैदावार शुरू हुई। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में कॉफ़ी की खरीदो फरोख में 30 अरब डॉलर से ज़्यादा रकम हासिल होती है।
अब आप ये रिपोर्ट दोबारा सुने।
कॉफ़ी का इस्तेमाल दुनिया के बेशतर ममालिक में मुख्तलिफ तरीक़ों से किया जाता है। कॉफ़ी को कैसे दरियाफ्त किया गया, इसके बारे में बहुत सी मुख्तलिफ कहानियाँ मशहूर हैं। इन सब में जो चीज़ मुश्तरक है वो ये है कि इसे सबसे पहले इथोपिया में पिया गया था। यूं तो कॉफ़ी पीने का पहला दुरुस्त तारीखी रिकॉर्ड 15वीं सदी का है, ताहम एक मशहूर कहानी के मुताबिक 9वीं सदी में भी कॉफ़ी मशरूब के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी। 17वीं सदी तक दुनिया भर में लोग कॉफ़ी से लुत्फंदोज़ हो रहे थे। कहानी के मुताबिक इथोपिया के एक किसान ने सबसे पहले कॉफ़ी के फ़ायदे दरियाफ्त किए। किसान ने देखा कि उसकी बकरियां वहां उगने वाली सुर्ख फलियां खाने के बाद ज़्यादा हशाश बशाश हो गईं और बहुत देर तक न सोईं। ये सुर्ख फलियां कॉफ़ी के बीज थे जिन्हें वो अपने साथ घर ले आया। किसान ने अपने एक बुज़ुर्ग को ये फलियां दीं, जिसने शुरू में इन्हें मामूली ख्याल किया और आग में फेंक दिया। आग में जाते ही फलियों की खुशबू ने उसका जहन बदल दिया और उसने इन फलियों से एक लजीज गर्म मशरूब तैयार कर लिया। यूं कॉफ़ी लोगों में तेज़ी से मशहूर हुई और कुछ ही अरसे में अरब ममालिक में न सिर्फ घरों बल्कि कॉफ़ी शॉप्स में भी बाकायदा पी जाने लगी। जैसे जैसे कॉफ़ी की मकबूलियत यूरोप में फैली, कॉफ़ी की दुकानें वहाँ भी नज़र आने लगीं और जल्द ही समाजी सरगर्मियों का मरकज़ बन गईं। इसके बाद अंग्रेज़ कॉफ़ी लेकर शुमाली अमेरिका चले गए। 1773 में जब वहाँ की हुकूमत ने चाय की खरीदो फरोख्त पर भारी टैक्स लगाया तो कॉफ़ी अमेरिका के लोगों का पसंदीदा मशरूब बन गई। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी पैदा करने वाला मुल्क ब्राज़ील है, जहाँ कॉफ़ी की इब्तिदा से मुतालिक भी एक दिलचस्प कहानी है। एक फौजी को ब्राज़ील से कॉफ़ी के पौधे हासिल करने के लिए फ्रांस भेजा गया तो वहाँ सख्त पाबंदी की वजह से किसी भी पौधे या बीज को मुल्क से बाहर ले जाना बहुत मुश्किल था। चुनाचे वो फौजी फूलों के गुलदस्ते में कॉफ़ी के बीज छुपाकर वापस ब्राज़ील ले गया, जहाँ कॉफ़ी की पैदावार शुरू हुई। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में कॉफ़ी की खरीदो फरोख में 30 अरब डॉलर से ज़्यादा रकम हासिल होती है।
मश्क नंबर 2 ख़त्म हुई। अब आप थोड़ी देर में मश्क नंबर 3 सुनेंगे। पर्चे में दिए गए मश्क नंबर 3 के सवालात पढ़ें।
مشق نمبر تین، سوال نمبر دس، آپ زندگی میں حالیہ تبدیلیوں سے متعلق چھ لوگوں کی گفتگو سن رہے ہیں۔ ہر ایک شخص کو اس کی دی گئی رائے اے سے جی سے ملائیں۔ ہر شخص کے لیے انگریزی حروف اے سے جی میں سے ایک حرف دیے گئے خانے میں لکھیں۔ ہر حرف کا استعمال صرف ایک بار کریں۔ ایک حرف اضافی ہے جسے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ ہر حصے کو دو بار سنیں گے۔ پہلی رائے،
میں نے پچھلے سال کالج کی تعلیم مکمل کی اور اب میں نوکری کر رہی ہوں۔ پہلے میں نے یونیورسٹی جانے کا ارادہ کیا تھا، لیکن میری زیادہ تر سہیلیوں نے ملازمت شروع کر دی۔ یونیورسٹی شروع کرنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میری سہیلیوں نے درست فیصلہ کیا تھا، لہٰذا میں نے یونیورسٹی کو بتایا اور کام کی تلاش شروع کر دی۔ مجھے لگتا ہے کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا تھا، لیکن کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اگر میں پڑھائی جاری رکھتی تو زندگی کیسی ہوتی۔ دوسری رائے،
شہر آنے سے پہلے میں ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ اگرچہ میں گاؤں کی زندگی سے بور ہو گیا تھا، لیکن مجھے بڑی جگہ جا کر رہنے سے ڈر لگتا تھا، اس لیے میں لمبے عرصے تک شہر جانے کے خیال کو ٹالتا رہا، جو شاید ایک غلطی تھی۔ آخر کار میرے ایک رشتہ دار نے، جن کا شہر میں کاروبار ہے، مجھے اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے کہا۔ میں نے فوراً ان کی یہ پیشکش قبول کر لی، اور مجھے آج تک کبھی اپنے فیصلے پر پچھتاوا نہیں ہوا۔ تیسری رائے،
میں گزشتہ کئی سال سے ایک قریبی فیکٹری میں کام کر رہی تھی، جو پچھلے مہینے بند ہو گئی۔ میں کافی پریشان ہوئی کیونکہ ہمارے علاقے میں کوئی اور فیکٹری نہیں تھی۔ مجھے گھر سے قریب کام کرنا پسند ہے، اس لیے میں نے اپنا کاروبار شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ میرا خیال تھا کہ میرے گھر والے مجھے اس فیصلے کے خلاف قائل کرنے کی کوشش کریں گے، مگر خلاف توقع انہوں نے مجھے حیران کر دیا۔ آج میں اپنے کام سے خوش بھی ہوں اور مطمئن بھی۔ چوتھی رائے،
میں ہمیشہ سے کھیلوں میں اچھا رہا ہوں، اور تقریباً ایک سال پہلے تک قومی سطح پر کرکٹ بھی کھیل چکا ہوں، بلکہ میں نے تو ایک پیشہ ور کھلاڑی بننے کا خواب بھی دیکھ رکھا تھا۔ پچھلی چھٹیوں میں کچھ دوستوں کے ساتھ پہاڑوں کی سیر پر گیا تو میری زندگی بدل گئی۔ پہاڑوں پر چڑھنا اور بلند چوٹیاں سر کرنا اب میری زندگی کا مقصد بن گیا ہے۔ مجھے تو کرکٹ چھوڑنے کا افسوس بھی نہیں، اور تب سے میں نے شاید ہی کوئی میچ کھیلا ہو۔ پانچویں رائے،
روزانہ ٹرین کے ذریعے کام پر آنے جانے میں گھنٹوں ضائع ہونے کی وجہ سے میں نے گاڑی خریدی۔ یوں تو میرے لیے ٹرین کا سفر آسان تھا، اور میں اکثر سفر کے دوران لیپ ٹاپ پر کام بھی کر لیتی تھی، لیکن طویل سفر سے بہت تھک جاتی تھی۔ اب تو کام سے واپس آ کر بھی میرے پاس کافی وقت ہوتا ہے اور ذہنی سکون بھی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ گاڑی چلانے اور اس کی دیکھ بھال کا خرچہ ٹرین کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ چھٹی رائے،
پچھلے سال میں نے بیرون ملک مستقل طور پر رہنے کا فیصلہ کیا۔ میرے قریبی دوستوں نے مجھے قائل کرنے کی کوشش کی کہ شاید ایسا کرنا میرے لیے درست نہ ہو۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر کئی ایسے لوگوں کے بلاگ بھی نظر سے گزرے تھے جو دوسروں کو اپنے تجربات سے آگاہ کرتے ہیں، لیکن میں نے کسی کی نہ سنی اور دوسروں کے خیالات اور تجربے سے متاثر ہوئے بغیر فیصلہ لے لیا۔ چند مشکلات تو پیش آئیں، لیکن مجموعی طور پر میرا فیصلہ درست ثابت ہوا۔
اب آپ یہ گفتگو دوبارہ سنیں۔
پہلی رائے،
میں نے پچھلے سال कॉलेज की तालीम मुकम्मल की और अब मैं नौकरी कर रही हूँ। पहले मैंने यूनिवर्सिटी जाने का इरादा किया था, लेकिन मेरी ज़्यादातर सहेलियों ने मुलाजमत शुरू कर दी। यूनिवर्सिटी शुरू करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरी सहेलियों ने दुरुस्त फैसला किया था, लिहाजा मैंने यूनिवर्सिटी को बताया और काम की तलाश शुरू कर दी। मुझे लगता है कि मैंने सही फैसला किया था, लेकिन कभी कभी सोचती हूँ कि अगर मैं पढ़ाई जारी रखती तो जिंदगी कैसी होती। दूसरी राय।
शहर आने से पहले मैं एक गांव में रहता था। अगरचे मैं गांव की जिंदगी से बोर हो गया था, लेकिन मुझे बड़ी जगह जाकर रहने से डर लगता था, इसलिए मैं लंबे अरसे तक शहर जाने के ख्याल को टालता रहा, जो शायद एक गलती थी। आखिरकार मेरे एक रिश्तेदार ने, जिनका शहर में कारोबार है, मुझे अपने साथ काम करने के लिए कहा। मैंने फौरन उनकी ये पेशकश कबूल कर ली और मुझे आज तक कभी अपने फैसले पर पछतावा नहीं हुआ। तीसरी राय।
मैं गुज़िश्ता कई साल से एक करीबी फैक्ट्री में काम कर रही थी, जो पिछले महीने बंद हो गई। मैं काफ़ी परेशान हुई क्योंकि हमारे इलाके में कोई और फैक्ट्री नहीं थी। मुझे घर से करीब काम करना पसंद है, इसलिए मैंने अपना कारोबार शुरू करने का फैसला किया। मेरा ख्याल था कि मेरे घर वाले मुझे इस फैसले के खिलाफ कायल करने की कोशिश करेंगे, मगर खिलाफ तवक्को उन्होंने मुझे हैरान कर दिया। आज मैं अपने काम से खुश भी हूं और मुतमईन भी। चौथी राय।
मैं हमेशा से खेलों में अच्छा रहा हूं और तकरीबन एक साल पहले तक कौमी सतह पर क्रिकेट भी खेल चुका हूं, बल्कि मैंने तो एक पेशावर खिलाड़ी बनने का ख्वाब भी देख रखा था। पिछली छुट्टियों में कुछ दोस्तों के साथ पहाड़ों की सैर पर गया तो मेरी ज़िंदगी बदल गई। पहाड़ों पर चढ़ना और बुलंद चोटियां सर करना अब मेरी ज़िंदगी का मकसद बन गया है। मुझे तो क्रिकेट छोड़ने का अफसोस भी नहीं, और तब से मैंने शायद ही कोई मैच खेला हो। पांचवी राय।
रोज़ाना ट्रेन के ज़रिए काम पर आने जाने में घंटों ज़ाया होने की वजह से मैंने गाड़ी खरीदी। यूं तो मेरे लिए ट्रेन का सफ़र आसान था और मैं अक्सर सफ़र के दौरान लैपटॉप पर काम भी कर लेती थी, लेकिन तवील सफ़र से बहुत थक जाती थी। अब तो काम से वापस आकर भी मेरे पास काफ़ी वक्त होता है और ज़हनी सुकून भी है। ये अलग बात है कि गाड़ी चलाने और उसकी देखभाल का ख़र्चा ट्रेन के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। छठी राय।
पिछले साल मैंने बैरून मुल्क मुस्तकिल तौर पर रहने का फ़ैसला किया। मेरे करीबी दोस्तों ने मुझे कायल करने की कोशिश की कि शायद ऐसा करना मेरे लिए दुरुस्त न हो। इसके अलावा इंटरनेट पर कई ऐसे लोगों के ब्लॉग भी नज़र से गुज़रे थे जो दूसरों को अपने तजर्बात से आगाह करते हैं, लेकिन मैंने किसी की ना सुनी और दूसरों के ख्यालात और तजर्बे से मुतासर हुए बगैर फ़ैसला ले लिया। चंद मुश्किलात तो पेश आईं, लेकिन मजमूई तौर पर मेरा फैसला दुरुस्त साबित हुआ।
मश्क नंबर 3 खत्म हुई। अब आप थोड़ी देर में मश्क नंबर 4 सुनेंगे। पर्चे में दिए गए मश्क नंबर 4 के सवालात पढ़ें। मश्क नंबर 4। सवाल नंबर 11-18। आप एक मशहूर अदाकारा से लिया गया इंटरव्यू सुन रहे हैं। इंटरव्यू सुनकर हर सवाल के लिए ए, बी या सी में से सही जवाब के सामने दिए गए खाने में टिक का निशान लगाएं। आप ये इंटरव्यू दो बार सुनेंगे।
आज हम जिस शख्सियत का इंटरव्यू करने जा रहे हैं उनका ताल्लुक टीवी और फिल्म की दुनिया से है। सबा एक मारूफ अदाकार की बेटी भी हैं और हम इन्हें एक अरसे से टीवी और सिनेमा की स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो आइए सबा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सबा।
जी वालेकुम अस्सलाम।
सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी इब्तदाई जिंदगी कैसी थी?
मेरा बचपन ज्यादातर वालदा के साथ गुजरा क्योंकि वालिद साहब ड्रामों और फिल्मों की शूटिंग्स में मसरूफ होते थे। इस वजह से वालदा ने ही हमारी तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी उठाई, लेकिन वालिद साहब भी कभी हमारी तरफ से गाफिल नहीं रहे। तालीम और तरबियत के मामले में हमेशा मैं और मेरा भाई उनकी अव्वलीन तरजीह रहे हैं। यही वजह है कि मेरी शख्सियत में वालिद और वालदा दोनों का असर बराबर है।
अच्छा, तो ये बताइए आप वालिदैन में से ज्यादा किसके करीब हैं?
वैसे तो मैं अपने वालिद से भी करीब हूँ और अपनी हर फरमाइश उन्हीं से करती हूँ, जिसके लिए उन्होंने कभी इनकार नहीं किया। मगर अपनी जिंदगी के दीगर मामलात में वालदा से बातचीत करती हूँ, क्योंकि हम माँ और बेटी का ताल्लुक ऐसा ही है जैसे दो सहेलियाँ आपस में हर बात कर सकती हैं। वालदा से अपने हर मामले में मशवरा करती हूँ क्योंकि वो मेरे मिजाज को बेहतर समझती हैं। शायद यही वजह थी कि शादी के लिए भी अम्मी ने ही तमाम मामला तय किए और वालिद साहब को भी उन्होंने ही बताया था।
अच्छा, अपने भाई फैसल के बारे में कुछ बताइए। आप दोनों के ताल्लुकात कैसे हैं? बहन भाई में नोक झोंक चलती रहती है या गुफ्तगू संजीदा रहती है?
चूंकि हम दो ही बहन भाई हैं, लिहाजा एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। मैं पूरे खानदान में शरारती मशहूर थी, मगर भाई संजीदा मिजाज के हैं क्योंकि वो वालिद पर गए हैं। बचपन में अक्सर मामूली बातों पर मैं गुस्सा किया करती थी और हमारे दरमियान लड़ाई हो जाती, मगर फैसल भाई ज़रा ठंडे मिजाज के हैं, इसलिए हम जल्द ही एक दूसरे को मना लिया करते थे। अब भी हमारे दरमियान दोस्ती है और हम एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।
अच्छा, तो ये बताइए कि अदाकारी का ख्याल कब और कैसे आया?
ये भी एक दिलचस्प मामला है। ऐसा हरगिज नहीं था कि मुझे टीवी या फिल्म में काम करने का बचपन से शौक था या मुझे अदाकारी का जुनून था। ये सब बस अचानक हो गया। अदाकारी के जरासीम तो वालिद से विरासत में ही मिल गए थे, इसलिए ज्यादा सोचना नहीं पड़ा। लेकिन शुरू में वालिद की तरफ से अदाकारी को मुस्तकिल काम के तौर पर अपनाने में कोई हौसला अफजाई नहीं हुई।
अच्छा, आपके ख्याल में ऐसा क्यों था?
दरअसल अब्बू ने साफ कह दिया था कि तुमने अगर अदाकारी में आना है तो पहले अपनी तालीम मुकम्मल करना होगी। वो नहीं चाहते थे कि मुस्तकबिल में मेरे लिए काम का इंतखाब महदूद हो जाए। मैंने भी इस हवाले से अदाकारी पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी और फिर तालीम मुकम्मल करने के बाद ही शोबिज में आई। यकीनन वालिद साहब मेरी बेहतरी के लिए ही सोच रहे थे, जब ही तो उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया। मगर मुझे काफी देर बाद समझ में आया कि मेरे लिए उनका फैसला बिल्कुल ठीक था।
बहुत खूब। तो पहली बार आपने अपने वालिद के साथ कब काम किया?
तालीम मुकम्मल करने के बाद मेरे लिए अदाकारी समेत किसी भी शोबे का इंतखाब मुमकिन था। जब मुझे टीवी के एक ड्रामे में ऑफर हुई और ये मालूम हुआ कि उसमें मेरे साथ वालिद साहब भी काम कर रहे हैं, तो मैं बहुत खुश हुई और इस बात को बहुत मामूली समझा कि चलो अब्बू के साथ काम करने में मजा आएगा।
अरे वाह, तो फिर कैसा रहा वालिद साहब के साथ काम का ये पहला तजर्बा?
मुझे शदीद हैरानी तो उस वक्त हुई जब मुझे मकाल में बोलने थे और मेरे सामने वालिद साहब खड़े थे। तब पता चला कि उस वक्त मैं अपने अब्बू के सामने नहीं बल्कि एक बहुत बड़े फनकार के सामने खड़ी हूँ। मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा था, एकदम घबरा सी गई थी। फिर वालिद साहब ने हिम्मत दी और हौसला अफजाई की। जब मैंने वालिद साहब के मुकाबिल कामयाबी के साथ शूटिंग मुकम्मल करवाई तो ये मेरे लिए एक यादगार तजर्बे से कम नहीं था। पहले ही दिन उनसे बतौर अदाकार बहुत कुछ सीखने को मिला और अब तक सीख रही हूँ। वो अपने काम के हवाले से वसी तजर्बा रखते हैं और खुद अपने आप में एक अकेडमी है।
मुस्तकबिल में क्या इरादे हैं?
फिलहाल तो चंद साल अदाकारी करूंगी, उसके बाद मेरा इरादा है कि अपने वालिद साहब के साथ मिलकर एक ऐसी फिल्म बनाऊं जिसमें पाकिस्तान के तमाम इलाकों के कुदरती हुसन को दुनिया के सामने पेश किया जाए।
बहुत खूब, हमारे प्रोग्राम में शिरकत के लिए आपका शुक्रिया।
इंटरव्यू की दावत देने के लिए आपका भी बहुत शुक्रिया।
अब आप ये बातचीत दोबारा सुने। आज हम जिस शख्सियत का इंटरव्यू करने जा रहे हैं उनका ताल्लुक टीवी और फिल्म की दुनिया से है। सबा एक मारूफ अदाकार की बेटी भी हैं और हम इन्हें एक अरसे से टीवी और सिनेमा की स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो आइए सबा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सबा।
जी वालेकुम अस्सलाम।
सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी इब्तदाई जिंदगी कैसी थी?
मेरा बचपन ज्यादातर वालदा के साथ गुजरा, क्योंकि वालिद साहब ड्रामों और फिल्मों की शूटिंग्स में मसरूफ होते थे। इस वजह से वालदा ने ही हमारी तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी उठाई, लेकिन वालिद साहब भी कभी हमारी तरफ से गाफिल नहीं रहे। तालीम और तरबियत के मामले में हमेशा मैं और मेरा भाई उनकी अव्वलीन तरजीह रहे हैं। यही वजह है कि मेरी शख्सियत में वालिद और वालदा दोनों का असर बराबर है।
अच्छा, तो ये बताइए आप वालिदैन में से ज्यादा किसके करीब हैं?
वैसे तो मैं अपने वालिद से भी करीब हूँ और अपनी हर फरमाइश उन्हीं से करती हूँ, जिसके लिए उन्होंने कभी इनकार नहीं किया। मगर अपनी जिंदगी के दीगर मामलात में वालदा से बातचीत करती हूँ, क्योंकि हम माँ और बेटी का ताल्लुक ऐसा ही है जैसे दो सहेलियां आपस में हर बात कर सकती हैं। वालदा से अपने हर मामले में मशवरा करती हूँ, क्योंकि वो मेरे मिजाज को बेहतर समझती हैं। शायद यही वजह थी कि शादी के लिए भी अम्मी ने ही तमाम मामला तय किए और वालिद साहब को भी उन्होंने ही बताया था।
अच्छा, अपने भाई फैसल के बारे में कुछ बताइए। आप दोनों के ताल्लुकात कैसे हैं? बहन भाई में नोक झोंक चलती रहती है या गुफ्तगू संजीदा रहती है?
चूंकि हम दो ही बहन भाई हैं, लिहाजा एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। मैं पूरे खानदान में शरारती मशहूर थी, मगर भाई संजीदा मिजाज के हैं, क्योंकि वो वालिद पर गए हैं। बचपन में अक्सर मामूली बातों पर मैं गुस्सा किया करती थी और हमारे दरमियान लड़ाई हो जाती, मगर फैसल भाई जरा ठंडे मिजाज के हैं, इसलिए हम जल्द ही एक दूसरे को मना लिया करते थे। अब भी हमारे दरमियान दोस्ती है और हम एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।
अच्छा, तो ये बताइए कि अदाकारी का ख्याल कब और कैसे आया?
ये भी एक दिलचस्प मामला है। ऐसा हरगिज नहीं था कि मुझे टीवी या फिल्म में काम करने का बचपन से शौक था या मुझे अदाकारी का जुनून था। ये सब बस अचानक हो गया। अदाकारी के जरासीम तो वालिद से विरासत में ही मिल गए थे, इसलिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा। लेकिन शुरू में वालिद की तरफ से अदाकारी को मुस्तकिल काम के तौर पर अपनाने में कोई हौसला अफजाई नहीं हुई।
अच्छा, आपके ख्याल में ऐसा क्यों था?
दरअसल अब्बू ने साफ कह दिया था कि तुमने अगर अदाकारी में आना है तो पहले अपनी तालीम मुकम्मल करना होगी। वो नहीं चाहते थे कि मुस्तकबिल में मेरे लिए काम का इंतखाब महदूद हो जाए। मैंने भी इस हवाले से अदाकारी पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी और फिर तालीम मुकम्मल करने के बाद ही शोबिज में आई। यकीनन वालिद साहब मेरी बेहतरी के लिए ही सोच रहे थे, जबही तो उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया। मगर मुझे काफ़ी देर बाद समझ में आया कि मेरे लिए उनका फैसला बिल्कुल ठीक था।
बहुत खूब, तो पहली बार आपने अपने वालिद के साथ कब काम किया?
تعلیم مکمل کرنے کے بعد میرے لیے اداکاری سمیت کسی بھی شعبے کا انتخاب ممکن تھا۔ جب مجھے ٹی وی کے ایک ڈرامے میں آفر ہوئی اور یہ معلوم ہوا کہ اس میں میرے ساتھ والد صاحب بھی کام کر رہے ہیں تو میں بہت خوش ہوئی اور اس بات کو بہت معمولی سمجھا کہ چلو ابو کے ساتھ کام کرنے میں مزہ آئے گا۔
ارے واہ، تو پھر کیسا رہا والد صاحب کے ساتھ کام کا یہ پہلا تجربہ؟
مجھے شدید حیرانی تو اس وقت ہوئی جب مجھے مکالمے بولنے تھے اور میرے سامنے والد صاحب کھڑے تھے۔ تب پتا چلا کہ اس وقت میں اپنے ابو کے سامنے نہیں بلکہ ایک بہت بڑے فنکار کے سامنے کھڑی ہوں۔ مجھ سے تو بولا بھی نہیں جا رہا تھا، ایک دم گھبرا سی گئی تھی۔ پھر والد صاحب نے ہمت دی اور حوصلہ افزائی کی۔ جب میں نے والد صاحب کے مقابل کامیابی کے ساتھ شوٹنگ مکمل کروائی تو یہ میرے لیے ایک یادگار تجربے سے کم نہیں تھا۔ پہلے ہی دن ان سے بطور اداکار بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور اب تک سیکھ رہی ہوں۔ وہ اپنے کام کے حوالے سے وسیع تجربہ رکھتے ہیں اور خود اپنے آپ میں ایک اکیڈمی ہیں۔
مستقبل میں کیا ارادے ہیں؟
فی الحال تو چند سال اداکاری کروں گی، اس کے بعد میرا ارادہ ہے کہ اپنے والد صاحب کے ساتھ مل کر ایک ایسی فلم بناؤں جس میں پاکستان کے تمام علاقوں کے قدرتی حسن کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔
بہت خوب، ہمارے پروگرام میں شرکت کے لیے آپ کا شکریہ۔
انٹرویو کی دعوت دینے کے لیے آپ کا بھی بہت شکریہ۔
ریکارڈنگ ختم ہوئی اور اس کے ساتھ یہ امتحان بھی ختم ہوا۔ دس از دی اینڈ آف دا ریکارڈنگ اینڈ آف دی ایگزامینیشن۔